आज है 28 फरवरी दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान से शांति वार्ता की पेशकश की। बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी हमने एनडीए से नाता तोड़ा।
हमारी पार्टी को ना तो बिहार की सरकार में हम है ना केंद्र की सरकार में हम है, तो आखिर हमारी स्थिति क्या है एनडीए के अंदर।
नाइजीरिया में बोको हराम स्कूली लड़कियों का अपहरण क्यों करता है।
कोशिश किया जाता है थ्रू रिलीजियस इनको पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ किया जाए ताकि ये इस संगठन के लिए काम कर सके।
सुनिएगा दुनिया जहान में, लेकिन ये सब विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान के सामने बिना किसी शर्त के शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है और उन्हें वैध राजनीतिक गुट मानने की पेशकश की है। काबुल में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन में बोलते हुए गनी ने संघर्ष विराम का प्रस्ताव देते हुए दोनों ओर से बंदियों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही। अफगानिस्तान में पिछले 16 सालों से गृहयुद्ध चल रहा है। वहीं तालिबान के प्रवक्ता का कहना है कि वो अभी अपने नेताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सांसद फौजिया कूफी ने बीबीसी से कहा है कि इससे पहले भी शांति प्रस्ताव दिए जाते रहे हैं और तालिबान ने हिंसा नहीं रोकी है। फौजिया कूफी ने कहा, तालिबान ऐसी सरकार से बात नहीं करेंगे जो इतनी नाजुक है, अंदरूनी तौर पर बटी हुई है और शांति को लेकर जिसकी एक राय नहीं है। शांति के मुद्दे पर हमारी अपनी अंदरूनी एक राय होनी चाहिए। शांति से हमारा क्या मतलब है, इसकी हमें एक परिभाषा भी तय करनी चाहिए। भारत सरकार के मुताबिक पिछली तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 7.2% की दर से बढ़ा है। सार्वजनिक बैंकों में हुए घोटाले और उससे पहले नोटबंदी व GST जैसे फैसलों के बाद अर्थव्यवस्था की विकास दर मंद पड़ने की आशंका जताई गई थी। भारत इस समय दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान साल 2005 से 2008 के बीच GDP की दर 9% तक रही है। यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन के संघ से अलग होने के लिए कानूनी समझौते का पहला मसौदा प्रकाशित कर दिया है। ये समझौता दोनों पक्षों के बीच पहले से बन चुकी राजनीतिक सहमति पर आधारित है। ब्रिटेन के अलग होने की बातचीत का आधार बनने से पहले इस मसौदे पर यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश और यूरोपीय संसद चर्चा करेंगे। ब्रिटेन अगले साल मार्च में यूरोपीय संघ से अलग हो जाएगा। यूरोपीय संघ के प्रमुख वार्ताकार माइकल बार्नियर का कहना है कि अलग होने के बाद ब्रिटेन ने जो परिवर्तन के लिए समय मांगा है उस पर अभी सहमति नहीं बनी है। माइकल बार्नियर ने कहा, इन समस्याओं को देखते हुए, असहमतियों को देखते हुए, मैं ये ही कहूंगा कि इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं हमारे पास परिवर्तन काल नहीं है और इसलिए ही मैं मानता हूं कि वार्ता का अगला दौर बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण है। सीरिया के पूर्वी घूटा में लगातार दूसरे दिन 5 घंटों के संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है। विद्रोहियों और सीरियाई सरकारी बलों के बीच राजधानी दमिश्क के नज़दीक के इस इलाके में लड़ाई जारी है। सीरिया के सहयोगी रूस ने घेराबंदी में फंसे पूर्वी घूटा तक राहत पहुंचाने के लिए रोजाना 5 घंटे का संघर्ष विराम घोषित किया है। संघर्ष विराम के शुरुआती घंटे में तोपें शांत रहीं और हवाई हमले नहीं किए गए, लेकिन विद्रोहियों का कहना है कि इसके बाद हमले फिर शुरू हो गए। वहीं रूस ने विद्रोहियों पर बमबारी करने के आरोप लगाए हैं। पूर्वी घूटा में कई दिनों से जारी भीषण लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में 9 बच्चों की जान लेने के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता मनोज बैठा ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के मुताबिक स्कूल के बाहर बच्चों पर चढ़ने वाली कार को मनोज बैठा ही चला रहे थे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। आप इस कार्यक्रम को फेसबुक और अपने मोबाइल फोन पर लाइव सुन सकते हैं। 16 बरस पहले अमरीकी फौज की अगुवाई में अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा किया गया था, पर अब इतने बरसों बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान के नेताओं ने से शांतिवार्ता की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि अगर शांतिवार्ता पर बातचीत आगे बढ़ती है तो युद्ध विराम कर दिया जाएगा और कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है जिस पर और जानकारी दे रही हैं गुरप्रीत कौर।
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान को एक राजनीतिक ग्रुप के रूप में मान्यता देने की पेशकश की है। उन्होंने ये पेशकश काबुल प्रक्रिया बैठक के दौरान की, जिसमें 25 देशों और संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। 16 साल से ज्यादा समय से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति गनी ने ये प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि अब तालिबान पर निर्भर है कि वो शांति प्रक्रिया में शामिल हो।
शांति समझौते को आगे बढ़ाने के लिए हमने बिना किसी पूर्व शर्त के ये पेशकश की है। मैं तालिबान और उसके नेताओं से कहना चाहता हूँ कि फैसला उनके हाथ में है। गरिमापूर्ण शांति को अपनाएं और साथ आएं उस देश की रक्षा के लिए जो हमारे संघर्ष और बलिदान का नतीजा है।
ये थे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के शब्द। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने तालिबान को ऐसे समय में शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया है जब कुछ ही दिन पहले चरमपंथी संगठन ने अमेरिका से सीधे बातचीत की बात कही थी। सोमवार को तालिबान ने कहा था कि वो 16 वर्षों से चले आ रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अमेरिका से सीधे तौर पर बात करना चाहता है, लेकिन उन्होंने अफगान सरकार का जिक्र तक नहीं किया। अमेरिका की अधिक आक्रामक सैन्य कार्रवाई के जवाब में तालिबान रिहायशी इलाकों को पहले से ज्यादा निशाना बना रहा है, जिससे आम नागरिकों के जानमाल का नुकसान बढ़ गया है। राष्ट्रपति गनी ने कहा कि अगर तालिबान शांतिवार्ता के लिए तैयार हो जाता है तो उसे एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर मान्यता दी जा सकती है और इसके बाद वो चुनाव भी लड़ पाएगा। इसके बदले में गनी चाहते हैं कि तालिबान अफगान सरकार और संविधान को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे, क्योंकि पहले यही बात शांतिवार्ता के आड़े आ रही थी। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि वो संविधान की समीक्षा करने के लिए भी तैयार हैं।
अफगान राष्ट्रपति ने तालिबान से शांतिवार्ता में शामिल होने की दावत दी, अपील की। जानकारी दे रही थी गुरप्रीत कौर। और आइए अब रुख करते हैं हिंदुस्तान का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम एनडीए से अलग हो गई है। अब से कुछ देर बाद रात 8 बजे मांझी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। लेकिन मांझी ने एनडीए से संबंध क्यों तोड़े और इस फैसले से एनडीए पर क्या असर पड़ेगा, सुनिएगा पटना से सीटू तिवारी की रिपोर्ट।
हम पार्टी लगातार एनडीए गठबंधन से अपनी नाराजगी जता भी रही थी, लेकिन इसकी तात्कालिक वजह बनी उपचुनाव में जहानाबाद सीट पर उसकी दावेदारी को खारिज किया जाना और गया लोकसभा सीट के लिए कोई आश्वासन नहीं मिलना। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय यादव कहते हैं कि एनडीए के भीतर लगातार उनके दल को नजरअंदाज किया जा रहा था।
रालोसपा और लोजपा ये तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल है, ये लोग कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी को ना तो बिहार की सरकार में हम है ना केंद्र की सरकार में हम है, तो आखिर हमारी स्थिति क्या है एनडीए के अंदर।
बता दें बुधवार सुबह राजद नेता तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई, जिसके बाद ही एनडीए गठबंधन से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की विदाई की घोषणा हो गई। तेजस्वी यादव ने मौके पर कहा कि मांझी मेरे माता पिता के पुराने दोस्त हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि एनडीए गठबंधन में भगदड़ शुरू हो गई है जो आगे और बढ़ेगी।
समाज के दबे कुचले वर्ग की बात करने वाला, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाला नहीं।
इस बीच ये सवाल अहम है कि बिहार में दलित राजनीति का एक अहम चेहरा जीतन राम मांझी के एनडीए छोड़ जाने का क्या असर पड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन कहते हैं कि कोई बड़ा फर्क एनडीए को नहीं पड़ेगा, लेकिन राजद को दक्षिण बिहार में फायदा होगा।
कि भाजपा जानती है कि मांझी जाति का वोट केवल उनके पास में है और वो मुश्किल से 20% होंगे। राजद को फायदा यह होगा कि उसके माई समीकरण में मांझी के वोट आ जाने से दक्षिण बिहार में उसके वोट कुछ बढ़ेंगे।
जीतन राम मांझी का एनडीए से अलग होना एक सवाल ये भी छोड़ जाता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा भी मांझी के रास्ते पर आने वाले दिन में जा सकती है। आखिरकार राजनीति का एक ब्रह्म वाक्य तो है ही, राजनीति में दोस्त और दुश्मन सदा के लिए नहीं होते। सीटू तिवारी, बीबीसी पटना।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को गलत तरीके से काले धन को सफेद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सीबीआई ने चेन्नई के हवाई अड्डे से गिरफ्तार करके दिल्ली की एक अदालत में पेश किया। कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है और कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। आइए सीधे चलते हैं बेंगलोर, जहां से फोन पर स्थानीय पत्रकार इमरान कुरैशी हमारे संपर्क में हैं। इमरान, ये गिरफ्तारी की आशंका बहुत दिनों से जताई जा रही थी, उनके यानी कार्ति चिदंबरम के सीए को भी गिरफ्तार किया गया, आपके पास और क्या जानकारी है?
जी, अभी अभी खबर आई है कि कोर्ट ने सीबीआई को एक दिन के लिए उनसे पूछताछ करने के लिए हिरासत में दी है, और जबकि सीबीआई ने उनको 15 दिन की मोहलत मांग रहे थे, तो कोर्ट ने सिर्फ एक दिन की मोहलत दी है हिरासत के, एक दिन के लिए पूछताछ के लिए हिरासत में दी है। मगर ये इल्ज़ाम अभी और थोड़ा बहुत सीरियस हो गया है, क्योंकि अभी इल्ज़ाम सिर्फ कार्ति चिदम्बरम पर नहीं है बल्कि अभी सीधे उनके पिताजी पी चिदम्बरम पर है। ये मामला ऐसा हो गया है कि अभी इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी, जो INX मीडिया शुरू करने के लिए विदेशी निवेश की मोहलत मांगी थी, वो सिर्फ 4 करोड़ रुपयों की थी, और उसके बाद उन्होंने 300 करोड़ रुपये तक विदेशी निवेश देश के अंदर ला लिए। और जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सवाल पूछा कि उनसे सवाल पूछा कि कैसे हुआ, तो उस वक्त उन्होंने कार्ति चिदम्बरम से संपर्क की।
ये आरोप सीबीआई ने लगाया है,
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लगाई थी, उसके बाद सीबीआई। हाँ, तो उस वक्त जब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे,
अब सीबीआई क्या कह रही है जरा संक्षेप में?
सीबीआई ये कह रही है कि इंद्राणी मुखर्जी ने सीआरपीसी 164 के अनुसार मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दी है कि हमने पहले पी चिदम्बरम से मुलाकात की उनके ऑफिस में नॉर्थ ब्लॉक में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कार्तिक चिदम्बरम से मिलिए, मुलाकात कीजिए, और उसके बाद जो ट्रांसफर हुआ है पैसा, वो ये है कि पहले सिर्फ 10 लाख रुपए का इल्ज़ाम था, अभी ये गया है 3 करोड़ से ऊपर।
बहुत बहुत धन्यवाद इमरान कुरैशी आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का आज कांची में देहावसान हो गया। वो 82 साल के थे। आज सुबह उन्हें तबीयत बिगड़ने पर स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। अपने समय के प्रभावशाली हिंदू संतों में गिने जाने वाले जयेंद्र सरस्वती कई बार विवादों में भी घिरे। पूरी रिपोर्ट सुने फैसल मोहम्मद अली से।
महज 19 साल की उम्र में अपने गुरु द्वारा उत्तराधिकारी चुने जाने वाले सुब्रमण्या महादेव अय्यर उर्फ जयेंद्र सरस्वती का प्रभाव सिर्फ हिंदू धर्मावलंबियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एक दौर में उनका मठ तमिलनाडु की यात्रा पर जाने वाले केंद्रीय मंत्रियों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक के दौरे में शामिल हुआ करता था। वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय कहते हैं,
जयेंद्र सरस्वती जब शंकराचार्य बने थे, करीब 70 के दशक में बने थे शंकराचार्य, तब उन्होंने भारत की पदयात्रा की थी और उस समय ही लोग इनको पहली बार जान सके। उसके बाद ये बीच बीच में कई मौकों पर, खास करके अयोध्या विवाद के दौरान विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार और वाजपेयी सरकार पर इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका संवाद कराने और समस्या को सुलझाने में रही।
अयोध्या विवाद को सुलझाने की नीयत से भावी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव ने भी शंकराचार्य की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन इन प्रयासों में जयेंद्र सरस्वती को बहुत सफलता नहीं मिल पाई। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तब उनके इस मामले में हस्तक्षेप की आलोचना भी की थी, लेकिन फिर साल 2004 का वो दिन आया जिसने 2500 साल पुराने बताए जाने वाले इस मठ को बहुत बड़े विवाद में घेर लिया। कहते हैं इसकी स्थापना खुद आदि शंकराचार्य ने की थी। राम बहादुर राय कहते हैं,
दूसरी बार ये विवाद में आए जब जयललिता ने एक हत्या के आरोप में इनको गिरफ्तार कराया, फिर वो मुकदमा चला लेकिन कोर्ट से वे बरी हो गए।
थिरुवयूर जिले के गांव में जन्मे कांची मठ के 69वें शंकराचार्य को अदालत ने साल 2005 के शुरुआत में जमानत पर रिहा कर दिया। فیصل محمد علی، بی بی سی دلی۔
دن بھر شارٹ ویو 49، 31 اور 25 میٹر بینڈ، یعنی 5875، 9510، 9540، 11945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر۔
یہ بی بی سی ہندی سیوا ہے اور آپ سن رہے ہیں کارکرم دن بھر۔ ہندی سنیما کی مشہور اداکارہ شری دیوی کا آج ممبئی میں انتم سنسکار کر دیا گیا۔ پچھلے شنیوار کو 54 ورش کی عمر میں دبئی میں ان کی مرتیو ہو گئی تھی۔ آج ان کے انتم سنسکار میں ہزاروں پرشنسکوں اور سنیما کی دنیا کے لوگوں نے اپنی پسندیدہ کلاکار کو انتم شردھانجلی دی۔ بی بی سی مراٹھی کے ابھیجیت کامبلے وہاں موجود تھے، جن سے کچھ ہی دیر پہلے میں نے بات کی۔
اس وقت میں ولے پارلے کی ہندو سمشان بھومی کے باہر کھڑا ہوں۔ اسی ہندو سمشان بھومی میں شری دیوی کے اوپر انتم سنسکار ہو رہے ہیں۔ کافی سیلیبریٹیز یہاں آ چکے ہیں، امیتابھ بچن آئے ہیں، شاہ رخ خان آئے ہوئے ہیں، کپور جو فیملی ہے پوری، وہ بھی سب آ چکے ہیں، اور باہر بڑی مقدار میں فینس کی بھیڑ جمع ہوئی ہے۔
تو یہ کتنے لوگ اور کتنا لمبا ان کا جنازہ رہا؟
ان کا جنازہ جو ہے لوکھنڈ والا سیلیبریشن اسپورٹس کلب سے نکل کے ولے پارلے تک آیا، جو پورے پونے گھنٹے تک چلا ان کے جنازے کا سفر، اور اس جنازے میں قریباً 3 سے 4 ہزار لوگ شامل تھے۔ اس کے سوا جو بھی روڈ ہے وہاں سے یہاں آنے تک، ہر جگہ لوگ کھڑے تھے، کسی چوک میں لوگ کھڑے تھے، کہاں ڈیوائڈر پہ لوگ کھڑے تھے، لوکھنڈ والا سے لے کے ولے پارلے تک جگہ جگہ لوگ ان کا درشن لینے کے لیے کھڑے تھے۔
جو تصویریں ابھی تک آئی ہیں اس میں سب کچھ سفید رنگ میں رنگا ہوا تھا، پھولوں کا رنگ بھی سفید تھا، سفید چادریں تھیں۔ خاص وجہ تھی اس کی کچھ؟
ہم سب جانتے ہیں کہ شری دیوی جی کو سفید رنگ کافی پسند تھا، شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ سفید پھول ان کی جو گاڑی تھی جس میں ان کو لایا گیا تو سفید پھولوں سے سجایا تھا، اور جو وہاں پہ بھی جب ان کا پارتھیو رکھا گیا تو کافی ساری سفید چیزیں وہاں رکھی گئی۔ جو فینس ہے، جب ہم ان سے بات کر رہے تھے تب ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ کوئی جانے کی عمر نہیں ہے، اور چونکہ شری دیوی ابھی بھی ایکٹنگ میں سکریہ تھی، اس لیے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ بہت جلدی ایگزٹ انہوں نے لے لی۔
شری دیوی کا انتم سنسکار ہو چکا ہے یا اس وقت ہو رہا ہے؟
جی، ان کا انتم سنسکار اس وقت ہو رہا ہے، اور میں خاص کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ شری دیوی پدم شری سے سنمانت تھی، اس لیے پورے راجکیہ سنمان کے ساتھ ان کے اوپر انتم سنسکار ہو رہا ہے۔ ان کا پارتھیو جو ہے وہ ترنگے میں لٹکا ہوا تھا، اور یہاں پر پوری سلامی دے کر ان کے اوپر انتم سنسکار ہو رہا ہے۔
ممبئی میں شری دیوی کا انتم سنسکار، جانکاری دے رہے تھے بی بی سی مراٹھی کے سنواداتا ابھیجیت کامبلے۔ یہ بی بی سی ہندی سیوا ہے اور آپ سن رہے ہیں کارکرم دن بھر۔ میں ہوں راجیش جوشی اور وقت ہے دنیا جہان کا۔ دنیا جہان میں آج بات نائجیریا کی۔ پشچمی افریقی دیش نائجیریا میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر چھاتراؤں کے اپہرن کی گھٹنا سامنے آئی ہے۔ بیتے سوموار کو یوبے پرانت کے دپاچی میں ایک اسکول پر ہوئے حملے کے بعد 110 چھاترائیں لاپتہ ہو گئی ہیں۔ اس کے لیے چرمپنتھی سنگٹھن بوکو حرام پر شک جتایا جا رہا ہے۔ بوکو حرام نے 4 سال پہلے ایک اسکول سے 250 سے زیادہ چھاتراؤں کا اپہرن کر لیا تھا۔ آخر کیا کارن ہے کہ اپہرن کی ایسی گھٹنائیں رک نہیں پا رہی؟ اس بار دنیا جہان میں آدرش راٹھور نے انہی سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔
دنیا جہان۔ یہ آواز ہے نائجیریا کی ان ابھاگی ماؤں کی جن کی بچیوں کا بوکو حرام نام کے چرمپنتھی سنگٹھن نے 4 سال پہلے اپہرن کر لیا تھا۔ یہ کہہ رہی ہیں، ہماری بچیوں کو واپس لاؤ۔ سال 2014 کے اپریل مہینے میں بوکو حرام کے چرم پنتھیوں نے چبوک قصبے کے ایک اسکول پر حملہ کیا، 276 لڑکیوں کو ٹرکوں پر ڈالا اور غائب ہو گئے۔ کچھ لڑکیاں بھاگ نکلیں، کچھ کو انتراشٹریہ سنستھاؤں نے سمجھوتا کر کے چھڑایا، مگر ابھی بھی 100 سے زیادہ لڑکیاں لاپتہ ہیں۔ اس گھٹنا کے 4 سال بعد ایک بار پھر 110 لڑکیوں کا اسکول سے اپہرن کر لیا گیا ہے، اور مانا جا رہا ہے کہ اس گھٹنا کے پیچھے بھی بوکو حرام کا ہاتھ ہے۔ बोको हराम ने अफ्रीका के सबसे घनी आबादी वाले देश नाइजीरिया में बम धमाकों, हत्याओं और अपहरणों से कोहराम मचाया हुआ है। ये संगठन सरकार को उखाड़कर इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना चाहता है। जेएनयू के सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज के प्रोफेसर अजय कुमार दुबे बताते हैं, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है।
लड़कियों को सैकड़ों के रूप में वो अपहरित करते हैं और वो स्कूल से अपहरण करते हैं, और उसके पीछे कारण ये है कि बोको हराम का मतलब होता है नो टू वेस्टर्न एजुकेशन, और ये लड़कियां जब पढ़ती हैं वो मॉडर्न तालीम पाना चाहती हैं, तो पूरे समुदाय को ये दिखाने के लिए, मुस्लिम समुदाय को और लोगों को भी, कि आप लड़कियों को पढ़ाओगे तो हम उन्हें उठा लेंगे और हम उनको पढ़ने नहीं देंगे क्योंकि हमारे धर्म के खिलाफ है, और इसलिए लड़कियों पे बार बार उनका अटैक होता है और बहुत सारे लड़कियों को उठा लेते हैं।
ऐसी रिपोर्टें आती रही हैं कि बोको हराम अपने कब्जे में आए ग्रामीणों से मजदूरी करवाता है, लड़कों को हथियारबंद लड़ाके बनाता है और लड़कियों को अपने लड़ाकों की पत्नी, किडनैप की गई छात्राओं को सेक्स स्लेव से लेकर आत्मघाती हमलावर बनाने तक में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बोको हराम के निशाने पर स्कूली लड़कियां ही क्यों होती हैं और उन्हें किडनैप करने के बाद वो करता क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज के प्रोफेसर सुरेश कुमार कहते हैं कि इसके तीन कारण हैं।
नंबर वन, आर्म्स का जो सप्लाई है, वेपन्स का, आर्म्स का जो सप्लाई है दूसरे देशों में, और पूरा एक जो टेररिस्ट रूट है उस पे, एक तो इन लड़कियों को वहां पे यूज किया जाता है। इसके साथ साथ बोको हराम का जो ड्रग्स का एक बहुत बड़ा जो कारोबार है उसमें भी इसको यूज किया जाता है। नंबर तीन, जो क्योंकि माइनर गर्ल्स हैं, इनको कोशिश किया जाता है कि इनको अपना थ्रू रिलीजियस इनको जो है वो पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ किया जाए ताकि ये इस संगठन के लिए काम कर सके। ये मुख्य तीन रीजन है कि ये गर्ल्स का जो है वो किडनैप करते हैं।
दो हजार 2014 वाली घटना के बाद अब फिर बोको हराम का इतने बड़े स्तर पर हमला करना दिखाता है कि कहीं न कहीं नाइजीरिया की सरकार खुद को इस संगठन के आगे बेबस पा रही है। बोको हराम आखिर कितना ताकतवर है जो ये स्कूलों से छात्राओं को उठा लेता है और कोई कुछ नहीं कर पाता? प्रोफेसर सुरेश कुमार बताते हैं,
जो नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया है उसमें ये 6 इलाके हैं, न्योमाटी के होसारी, किरोनोवा, वोल्को, गुम्बारू और साम्बिसा। ये जो 6 इलाके ये पूरे बोको हराम के नियंत्रण में है। यहाँ पे नाइजीरियन सरकार का कोई जो है वो दखलंदाजी नहीं है। शासन, लोकल गवर्नमेंट का प्रशासन, ये सारा बोको हराम चलाता है वहाँ पे। इसलिए जब क्योंकि सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं है तो इन्हीं का ही जो है वो इस्लामिक फाउंडेशन है वही काम कर रही है इन सभी राज्यों में। अभी ये जो गर्ल्स का जो किडनैपिंग होता है उसमें जो है वो जो गांव का जो गरीब आदमी है वो इनके खिलाफ नहीं बोलता क्योंकि उसको अपनी जान की सुरक्षा चाहिए। इसलिए आम जो गांव का है चाहे अनचाहे बोको हराम की सरकार को वो वहां पे मानता है।
एक तरफ जहां गरीब लोग बेबस हैं, वहीं इस संगठन को समर्थन भी लोगों से ही मिलता है। जेएनयू के प्रोफेसर दुबे इसके लिए वहां की गरीबी को जिम्मेदार बताते हैं।
नाइजीरिया प्राकृतिक संपदा से बहुत ही संपूर्ण देश है, लेकिन उसमें जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत ही स्क्यूड है, और उसमें ये देखा जाता है कि बहुत सारे आर्थिक संपदा होने के बाद, प्राकृतिक संपदा होने के बाद भी वहाँ पे बहुत बड़ा समुदाय के पास जीवन के साधन नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे है, और शुरू से नाइजीरिया धर्म के नाम पे, ट्राइब के नाम पे काफी डिवाइडेड देश रहा है, तो वहाँ पे गरीबी इस डिवीजन को और ही आगे बढ़ा देती है।
ये तो बात हुई सामाजिक कारणों की, आखिर बोको हराम के पास आर्थिक ताकत कहाँ से आती है? डीयू के प्रोफेसर सुरेश कुमार बताते हैं,
बोको हराम आज के दिन एक बहुत बड़ा एक जो है वो इकोनॉमिक्स का कार्टेल बना हुआ है जिसके थ्रू बिलियंस ऑफ डॉलर का जो पेट्रोल है वो इलीगल तरीके से बेचा जा रहा है। जो आर्म्स का जो है ट्रेड है वो पश्चिमी अपना अफ्रीका से होते हुए और वो सीरिया तक और अफगानिस्तान तक, ये एक पूरा नेटवर्क है जिसमें बोको हराम एक सीडी बना हुआ है।
नाइजीरिया की सरकार ने सैन्य कार्रवाई से बोको हराम को कुछ हद तक कमजोर तो किया है, लेकिन उसे खास सफलता क्यों नहीं मिल पा रही? प्रोफेसर दुबे बताते हैं,
जो अभी वहाँ प्रेसिडेंट बुखारी हैं वो बिल्कुल उसके खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ रखी है। पॉलिटिकल पार्टीज कंडेम करती हैं, इस्लामिक पार्टियां भी कंडेम करती हैं, लेकिन वो एक ऐसी संस्था बन गई है जिसको उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है। अमेरिकन्स ने वहाँ पे अपने आर्मी भेजा था और अफ्रीकन यूनियन ने भी भेजा था, लेकिन वो बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं इसलिए नहीं हुए कि लोकल लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, और अज्ञानता के कारण, अनपढ़ होने के कारण उनका अभी तक वर्चस्व बोको हराम का बना हुआ है।
ऐसे में बोको हराम की वजह से नाइजीरिया में जो संकट पैदा हुआ है उसे दूर कैसे किया जा सकता है? प्रोफेसर सुरेश कुमार,
सरकार के जो दावे हैं वो ये है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक के थ्रू इसके नियंत्रण को कम किया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी वहाँ की राजनीतिक आर्थिक जो शक्ति है वो बोको हराम के नियंत्रण में है। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, अदरवाइज अगर बिलियंस डॉलर का पेट्रोल इलीगल तरीके से कारोबार चलेगा, चाहे वो पश्चिमी देशों के हों चाहे दूसरे देशों के हों, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसकी वजह से बोको हराम के खिलाफ जो है वो सफलता नहीं मिल पा रही।
साफ है कि नाइजीरिया में बोको हराम जैसे चरमपंथी संगठन को एक तरफ जहां गरीबी और अशिक्षा से ताकत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ तेल और हथियारों के अवैध कारोबार से ये और मजबूत होता जा रहा है। ऐसे में जानकार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसे लेकर गंभीर रुख अपनाना होगा।
आदर्श राठौर प्रस्तुत कर रहे थे दुनिया जहान। आपको ये अंक कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। और अब एक नजर खेलों की दुनिया पर। खेल की खबरों में आज हॉकी, टेनिस और युवराज सिंह, क्योंकि इंदु पांडे मेरे सामने बैठी हुई हैं और उन्होंने युवराज सिंह का जिक्र किया। बताइए कहां से शुरू करेंगी?
शुरुआत करते हैं हॉकी से। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज अर्जेंटीना के खिलाफ शनिवार को अपने अभियान का आगाज करेगी, और इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड, आयरलैंड, मेजबान मलेशिया की टीमें भी भाग ले रही हैं। अर्जेंटीना के खिलाफ अच्छे मैच से टूर्नामेंट के बाकी मैचों में टीम का हौसला बढ़ेगा और फाइनल में जगह बनाने के लिए पूल स्तर का हर मैच जरूरी है। और गौरतलब है कि अजलान शाह कप टूर्नामेंट के लिए घोषित 18 सदस्यीय टीम में 3 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। रमनदीप सिंह को टीम का उपकप्तान बनाया गया है और टूर्नामेंट मलेशिया के इपोह में 3 से 10 मार्च तक खेला जाएगा। और उड़ीसा में इस साल के अंत में आयोजित होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए मेजबान भारत को भी आसान पूल में रखा गया है, जिसमें भारत के अलावा कैनेडा, दक्षिण अफ्रीका और बेल्जियम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी विश्व कप के लिए टीमों के समूहों की भी घोषणा कर दी है और इस टूर्नामेंट में पूल चरण के मुकाबले 28 नवंबर से 9 दिसंबर तक खेले जाएंगे और फाइनल मैच 16 दिसंबर को होगा। इसके अलावा इस टूर्नामेंट के लिए पूल ए में अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, स्पेन और फ्रांस को शामिल किया गया है। और बात करते हैं क्रिकेट की, तो काफ़ी अरसे से भारतीय टीम से बाहर हरफन मौला युवराज सिंह ने कहा है कि वो 2019 तक क्रिकेट खेलते रहेंगे और उसके बाद संन्यास पर फैसला लेंगे। युवराज ने भारत के लिए आखिरी वनडे जून 2017 में खेला था और उन्होंने कहा कि आईपीएल का आगामी सत्र उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अच्छे प्रदर्शन से विश्व कप 2019 खेलने का जो उनका दावा है वो पुख्ता हो सकता है।
इंदु पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका खेल समाचार सुनाने के लिए। और अब सभा का अंत नजदीक है, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान के सामने बिना किसी शर्त के शांतिवार्ता का प्रस्ताव रखा है और उन्हें वैध राजनीतिक गुट मानने की पेशकश की है। भारत सरकार के मुताबिक पिछली तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 7.2% की दर से बढ़ा है। यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन के संघ से अलग होने के लिए कानूनी समझौते का पहला मसौदा प्रकाशित कर दिया है। सीरिया के पूर्वी घूटा में लगातार दूसरे दिन 5 घंटों के संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है। विद्रोहियों और सीरियाई सरकारी बलों के बीच राजधानी दमिश्क के नज़दीक के इस इलाके में लड़ाई जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में 9 बच्चों की जान लेने के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता मनोज बैठा ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बीबीसी समाचार।
फिलहाल दिन भर में इतना ही। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने और इसे फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाने में मदद की ब्रजेश मिश्र ने। मैं राजेश जोशी अब सभी साथियों की ओर से आपसे विदा चाहता हूं। अगली मुलाकात होगी हमेशा की तरह भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि।